उवाच मया शक्तमना पार्था योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। The Supreme Personality of Godhead said, Now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt.
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब सुनिए किस प्रकार मुझ पर मन आसक्त करके, मेरा ही चित्त में चिंतन करके, इस प्रकार की योग साधना करके आप मेरी प्राप्ति कर सकते हैं।
We are reading this evening from the 7th chapter of Bhagavad Gita.
आज हम भगवद गीता के सातवें अध्याय का एक श्लोक पढ़ रहे हैं।
I would like to very gratefully thank all of you for dedicating your precious moments in this human form of life to come to this wonderful and auspicious satsang in honor of the 100th anniversary of our beloved spiritual master, His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
हमारे परम पूज्य गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जन्म शताब्दी महोत्सव के सत्संग में आप सभी यहाँ पर अपना कीमती समय देकर पधारे हैं, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आप सब उपस्थित भक्तगणों का बहुत बहुत आभारी हूँ।
श्री भगवान उवाच वेदव्यास द ऑथर ऑफ भगवद गीता is here beginning the 7th chapter by describing Krishna as the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth.
Bhagavad Gita ke lekhak rachayita Srila Vyas Dev is 7th adhyay ki shuruaat Sri Krishna ko Sri Bhagwan yane Purna Purushottam Bhagwan ya Param Satya इस तरह से वर्णन करते हैं।
According to the greatest and most important books of history, Mahabharat, Srimad Bhagavatam, it describes how the Supreme Truth, the cause of all causes, descended in this great land of Bharatvarsha, in the city of Mathura.
इतिहास के जो सबसे उच्च माने जा रहे प्रमाणित ग्रंथ हैं, जैसे कि भगवद गीता भागवत, उसमें बताया गया है किस तरह से परम सत्य भगवान इस पुण्य भारत भूमि में मथुरा नगरी में किस प्रकार से अवतरित हुए थे।
When he first appeared in the prison cell of King Kamsa, He displayed his beautiful forearm form of Narayana.
कंस राज के कैद खाने में जब वो पहली बार अवतरित हुए, वहाँ पर उन्होंने अपना चतुर्भुज जो नारायण का रूप है उसको प्रकट किया था।
And then on the request of Devaki, who was that great devotee, the Lord chose to accept as his mother during this incarnation.
और फिर देवकी जो कि इतनी महान भक्त है कि केवल उन्हीं की इच्छा और अनुरोध पर भगवान अवतरित हुए थे, उन्होंने अपना बाल रूप प्रकट किया।
He assumed the form of the most beautiful, attractive baby child.
और ये जो उन्होंने बाल रूप लिया था, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक ऐसे एक सुंदर बालक का रूप था.
That very night, Vasudev brought him across the stormy waters of Sri Jamuna to the village of Gokul.
और उसी रात उनके पिता वसुदेव जी ने जमुना में बहुत भयंकर बाढ़ आने पर भी उस जमुना जी को पार करके गोकुल नाम के एक छोटे से गांव में उस बालक को रखा.
There the almighty powerful creator of all universes, whose partial manifestations are such great incarnations as Mahavishnu, appeared like a helpless baby crawling in the courtyard of Sri Nanda Maharaj.
और वहां पर उस गांव में इस सृष्टि के महान सृष्टिकर्ता जिनके पूर्ण अंश के अंश के अंश ये महाविष्णु हैं, तो ऐसे प्रचंड और महान भगवान नंद बाबा के आंगन में एक असहाय बालक के रूप में खेल रहे थे.
In a mood of helplessness, he would cry for the milk given to him by Yashoda Mai.
और बहुत ही असहायता की भावना से वो अपनी माता यशोदा का दूध पीने के लिए रुदन करते थे.
The Supreme Absolute Truth, भगवान श्री कृष्ण, is the cause of all causes, the proprietor of everything that exists. Why does he cry for the milk of his mother?
परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, जो कि सर्वलोक महेश्वर हैं, वो अपनी माता का दूध पीने के लिए क्यों रोते हैं?
पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमि भक्त प्रयाश्चित. Because Krishna always longs for the offerings of love by his devotees.
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है उनके भक्त जो कुछ उनको प्रेम से भोग चढ़ाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं.
When he was hardly 3 months old, as an infant, the terrible Rakshasi Putana came to Gokul.
जब उनकी उम्र केवल 3 महीनों की ही थी तभी वहां पर भयंकर राक्षसी पूतना गोकुल में आ पहुंची.
She was more powerful than tens and thousands of grown men.
और पूतना राक्षसी तो सहस्रावधि पुरुषों से भी ज्यादा बलशाली थी.
But Krishna effortlessly drank the milk from her breast, which was coated with deadly, deadly poison, and sucked the very life air from this great Rakshasi.
लेकिन श्री कृष्ण ने उनका स्तनपान किया और दूध के साथ उनके प्राण भी खींच लिए.
This is Bhagwan.
यही है भगवान.
Bhagwan does not become Bhagwan through meditation or tapasya.
भगवान भगवान बनने के लिए कोई ध्यान धारणा तपस्या नहीं करते.
कृष्णा इज ऑलवेज द सुप्रीम लॉर्ड.
श्री कृष्ण सदैव परमेश्वर भगवान ही रहते हैं.
लेटर ऑन इन हिज वंडरफुल लीला ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र ही स्पोक द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ भगवद गीता.
उसके बाद कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर उन्होंने भगवद गीता के अमृतमयी वचनों को बोला.
एंड इन गीता ही एक्सप्लेन्स यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारत अभ्युथानाम अधर्मस्या तदात्मनम सृजाम्यहम. दैट अगेन एंड अगेन आई डिसेंड इनटू दिस वर्ल्ड टू रीएस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, टू एनाइलेट इग्नोरेंस एंड to protect my devotees.
और उन्हें भगवद गीता में बताया कि पुनः पुनः मैं इसी भौतिक जगत में अवतार लेता हूं और इस अवतार लेने का कारण है कि धर्म की पुनर्स्थापना करना, दुष्टों का नाश करना और मेरे भक्तों को सांत्वना देना.
In this great land of Bharatvarsha, the Lord has appeared again and again.
तो इस भारतवर्ष के महान पुण्य भूमि पर भगवान ने बारंबार अवतार लिया है.
In his incarnation of Lord Ramchandra, he appeared in Ayodhya.
रामचंद्र के रूप में उन्होंने अयोध्या में अवतार लिया था.
In his incarnation of Krishna, he appeared in Mathura.
कृष्ण के रूप में उन्होंने मथुरा में अवतार लिया था.
In both of these incarnations, the Lord traveled to so many places throughout India.
और इन दोनों अवतार कार्यों में उन्होंने भारत संपूर्ण भारत में अनेक जगह का भ्रमण किया.
Making this land the holiest of all theaters.
और इस तरह से इस भारत भूमि को सबसे पुण्यवान तीर्थों तीर्थ बनाया.
And in the land of Navadvip, the Lord appeared as the Yuga avatar of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
और नवद्वीप की भूमि पर वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में युग अवतार के रूप में अवतरित हुए.
He and Lord Nityananda Prabhu traveled throughout all of this land of Bharatvarsha, even to this place of Bombay, and induced everyone to receive the transcendental yuga dharma of the chanting of the holy names.
वो और नित्यानंद प्रभु वो भारत के अनेक स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया. यहाँ बंबई में भी आए और उन्होंने इस युग धर्म का प्रचार किया.
India is known as Punya Bhumi, the land of the highest piety.
भारत को पुण्य भूमि कहते हैं.
And Lord Sri Chaitanya ordered, the Supreme Lord ordered, every person who takes his birth in this great land of Bharatvarsha to practice the principles of Sanatan Dharma and spread them throughout the whole world.
और चैतन्य महाप्रभु की ये इच्छा थी कि भारत में जन्मे सभी व्यक्तियों ने अपने जन्म को सार्थक करके इसी सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए.
भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक कार खार पर उपकार. This is the greatest welfare service to all humanity.
तो ये अगर कोई करेगा ये मानवता का मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी.
But unfortunately, due to the influence of Kali Yuga, the people of this great land of Bharatvarsha have lost the real understanding of their spiritual heritage.
लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से इस भारत देश के निवासी अपनी जो सच्ची संस्कृति है उसकी जो पहचान है उसको खो दिए हैं.
Students go to the colleges and universities and they get their BAs, MAs, PhDs, but they know nothing about who they are, what is the purpose of life, or who is God.
तो लोग कॉलेज में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, BA, MA, PhD, अनेक डिग्रियां प्राप्त करते हैं, लेकिन ये तक मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है.
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. Human life begins when we make a serious study about our relationship with Krishna.
तो मनुष्य जीवन तभी आरंभ होता है जब हम एक बहुत ही गंभीर जिज्ञासा करते हैं कि मेरा श्री कृष्ण के साथ क्या रिश्ता है.
And here in this particular sloka, Krishna is telling us that by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt.
तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि पूर्णतया मन मुझ में आसक्त करके मेरा आश्रय लेके अगर आप इस तरह की योग साधना करेंगे तो आप मुझे निस्संशय समग्र रूप से जान सकते हैं.
This body is a temporary dress which we put on at the time of birth and we take off at the time of death.
ये जो शरीर है ये एक क्षण भंगुर वस्त्र है. जन्म के समय उसको पहना जाता है, मृत्यु के समय उसको त्याग दिया जाता है.
न हन्यते हन्य माने शरीरे न जायते मृयते वा कदाचिन. But Krishna says the soul does not die and is not born with this body. The soul The true self, the consciousness and life within us is eternal, full of knowledge and full of bliss.
लेकिन भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि आत्मा जो है वो तो ना कभी जन्मती है, शरीर के जन्म के साथ उसका जन्म नहीं होता, शरीर के नाश के साथ उसका नाश नहीं होता, वही हमारा असली स्वरूप, हमारी असली पहचान, असली प्रकाश, असली प्राण, तो वही आत्मा है.
The soul is part of Krishna.
और ये आत्मा श्री कृष्ण का एक अंश है.
And its natural function is to be completely attached to Krishna in love.
और आत्मा का स्वाभाविक कर्तव्य है कि पूर्ण प्रेम के साथ श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहना.
But in the conditioned state, the atma, the soul, is perceiving life through the mind.
लेकिन इस बद्ध अवस्था में यही आत्मा जीवन के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वो मन के द्वारा करता है.
The materially infected or diseased mind has two basic functions.
और इस तरह से भव रोग ग्रस्त मन दो प्रकार से काम करता है.
Accepting and rejecting.
संकल्प और विकल्प.
And the result of this process is hankering and lamenting.
और इसका नतीजा शोक और मोह.
Because the mind seeking pleasure wants to attach itself to a source of joy.
क्योंकि मन बहुत आनंद की खोज में एक ऐसे स्रोत के साथ अपने आप को जोड़ना चाहती है जिससे आनंद प्राप्त हो.
The Vedanta Sutra explains anandamayo vyashat that the soul is longing for the pleasure of reuniting with the source of all pleasure, Krishna.
और वेदांत सूत्र बताता है कि जो आत्मा है उसकी एक ही प्यास है, उसकी एक ही इच्छा है कि जो श्री कृष्ण जो सारे आनंद के स्रोत हैं उन्हीं के साथ आसक्त कर देना.
But through the mind it is looking for that pleasure through the temporary objects of this world.
लेकिन उसी मन से इस भौतिक जगत के विषय साधन में उसी आनंद की हम खोज करते हैं.
And every time we find some little pleasure which is representative of the supreme pleasure of God in a perverted form, we become attached to that.
तो इसलिए जब भी हमको थोड़ा सा भी कहीं आनंद दिखाई देता है और ये आनंद भगवान के सान्निध्य में जो आनंद मिलता है उसका एक प्रतिनिधित्व करता है या उसका एक विकृत भ्रष्ट रूप है, हम उसी के साथ बहुत आसक्त हो जाते हैं.
But because of the temporary nature of Krishna's creation, everything is based on the principle of duality. To the degree we attach ourselves to something that gives us pleasure, we have to suffer pain.
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो ये सृष्टि निर्माण की है ये इतनी क्षण भंगुर है कि यहाँ पर जगह जगह पर द्वंद्व का सामना करना पड़ता है. जब भी हमें थोड़ा सा आनंद मिलता है उसी क्षण हमको उतना ही दुख भोगना पड़ता है.
के ही संस्मरचित भोगा दुःख जोनाय एव ते. कृष्ण सेज एन इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट अटैच हिमसेल्फ टू द टेंपरेरी सोर्सेज ऑफ मिजरी ऑफ दिस वर्ल्ड.
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो बुद्धिमान है वो स्पर्श सुख यानी कि जो बहुत ही तात्कालिक सुख है उसके साथ अपना संबंध नहीं रखता.
Krishna says here, Maya Shaktamana Bharata. One should fix his mind in becoming attached to Krishna.
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं Maya Shaktamana, मुझ पर मन आसक्त करो.
But what has happened to this great land of India?
तो आज इस महान भारत भूमि की क्या दशा हो गई है?
I have traveled 10,000 miles to come to India for the purpose of receiving the real wealth of this land, which is transcendental knowledge.
मैं 10,000 मील यात्रा करके इस भारत देश में आया हूँ और मेरे आने का एकमात्र प्रयोजन है यहाँ की जो सबसे उच्च संपत्ति दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त करना.
It is your very birthright to experience the ultimate joy of loving and serving God.
तो भगवान को प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, इससे जो परम आनंद मिलता है उसको प्राप्त करना आप सभी का जन्मसिद्ध हक होता है।
But due to the uncontrolled and polluted mind, what are we attaching ourselves to?
लेकिन ये जो अनिर्बंध और प्रदूषित मन हमको कौन सी घटिया चीजों पर आसक्त कर देता है?
It is the great acharyas who truly represent this land of Bharatvarsha.
जो यहाँ के महान आचार्य हैं वो इस भारत देश के असली प्रतिनिधि हैं।
But today, India has become so pitifully degraded that the people that they are proud of to represent their country are the cricket players.
लेकिन आज हमारी इतनी दयनीय रूप से भ्रष्ट अवस्था हो गई है कि जिनको हम हमारे देश के प्रतिनिधि समझते हैं वो हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं।
And people have become so much attached to this foolish game.
और लोग इस मूर्ख गेम, इस खेल के साथ इतने आसक्त हो गए हैं।
They're hitting the balls with the stick and tens, hundreds of millions of people are glued to their TVs.
तो वो एक गेंद को एक लकड़े के बल्ले से मारते हैं और उसको देखने के लिए लाखों लोग अपने टीवी और रेडियो को माने चिपक कर बैठ जाते हैं।
So much attached.
वो इतने आसक्त हैं।
But to the degree you become attached to victory, you suffer when there's defeat.
लेकिन जितना आप विजय के साथ आसक्त होते हो, उतना ही जब आपकी टीम का पराजय होता है, आपको उतना ही दुख भोगना पड़ता है।
Last Saturday, anyone? Last Saturday, the India cricket team won, and everyone was jubilant, joyous, and throwing firecrackers.
पिछले ही शनिवार को इस टीम की विजय हुई थी, सभी लोगों ने आनंदोत्सव मनाया, यहाँ तक कि पटाखे भी फोड़े, और जब उसकी हार हुई, सब दुखी हो गए।
And last Wednesday, they lost.
और पिछले बुधवार को उनकी हार हो गई।
And everyone was in so much distress, so miserable and so angry, they were throwing bottles and stones.
और हार को देखकर सभी लोग इतने दुखी हो गए कि सब फिर बोतल और पत्थर फेंकने लगे।
And the whole world was watching.
सारी दुनिया देख रही थी।
What kind of uncivilized people is this?
कि ये किस तरह की असभ्य संस्कृति है?
So attached to this foolish game that the integrity of the people of the nation appears to be so completely uncivilized and foolish.
के यहाँ के लोग उनका जो चरित्र है वो इतना गिरा हुआ लगता है कि मानो इनकी संस्कृति पूरी असभ्य हो गई है।
In the Western world, I was brought up in America, where sports is king.
मैं पाश्चात्य जगत में ही जन्मा हूँ, वहाँ पर जो खेल है वो तो राजा समझा जाता है।
I have never seen or never heard, nor has anyone ever heard or seen people throwing bottles and stones because their team lost.
मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि लोग इतने दुखी हैं कि वो बोतल फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, कारण एकमात्र है उनकी टीम की हार हुई है।
I was thinking, how is it? America is a totally materialistic country based on a dharma, and they have certain dignity in the way they lose.
America जो है, वो तो अधर्म के ऊपर आधारित पूर्ण भोगासक्त संस्कृति है।
And India is the highest culture of spirituality, with the highest, most refined characteristics. And when they lose, they become lower than animals.
और भारत की संस्कृति तो सर्वोच्च आध्यात्मिक संस्कृति है, लेकिन जब उनकी हार होती है, वो बिल्कुल पशु जैसा व्यवहार करते हैं।
And I was thinking, the reason for this is that India has, throughout the millenniums, taken pride and found dignity in their spirituality, knowledge, detachment, and devotion.
तो मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा था, तो मुझे पता चला कि अनेक युगों से भारत ने केवल अपनी जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसके ऊपर ही आसक्त हुए हैं, गर्व किया है, और इस संस्कृति का मूल आधार है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति।
Because it is a spiritual culture.
क्योंकि ये आध्यात्मिक संस्कृति है।
And the Western lands like America, they are completely unspiritual culture. They're material cultures. Therefore, they have developed a sense of dignity, integrity, and pride in the way they deal with this material nature.
और जो पाश्चात्य जगत है, खास करके अमेरिका, उनकी संस्कृति तो बिल्कुल भोग आसक्त संस्कृति है, जड़वादी, भौतिकवादी संस्कृति है, और जिस प्रकार से उन्होंने इस भौतिक जगत की वस्तुओं पर अपनी आसक्ति बनाई है, उसी के अनुसार उन्होंने अपना चारित्र्य, अपना गर्व और अपनी जो संस्कृति है उसको आधारभूत किया है।
So they are very much mastered over the centuries how to be very refined and dignified in their material pursuits.
तो इसीलिए इस भौतिक जग के साधनों का भोग कैसे करना, इसके बारे में उन्होंने इस ये कला जो है उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अवगत किया है।
India over the millions of years have learned to be dignified in their spiritual culture.
और भारत ने अनेक युगों से केवल अपनी जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसी के ऊपर अपनी गरिमा को आधारभूत किया है।
And when Indians give up their spiritual culture and come to the material platform, they have no sense of dignity, no sense of integrity. They become like aboriginal animals.
और इसलिए जब भारतवासी जब अपनी संस्कृति को त्यागते हैं, पूर्ण रूप से भोग आसक्त संस्कृति की नकल करते हैं, तब तो वो अपनी सारी सभ्यता को खो देते हैं और बिल्कुल जंगली पशुवत व्यवहार करते हैं।
No morals. Cheating, angry, bad losers.
तो इस तरह से फंसाते हैं, बहुत क्रोधी हो जाते हैं।
And this is what the world sees.
और यही सारी दुनिया आज देख रही है।
This is a great shame.
और ये बहुत शर्म की बात है।
To attach yourselves to this.
इस तरह की वस्तु को अपने आप को आसक्त करना।
What is sports?
खेल का मतलब क्या है?
Animal propensities are based on eating, sleeping, mating, and defending.
पशु जो हैं, वो चार काम करते हैं: खाना, पीना, सोना, मथुन करना।
Human life is meant for self-realization.
मनुष्य जीवन आत्मसाक्षात्कार के लिए ही है।
Sports is nothing but defending.
और खेल ये केवल भय या अपना संरक्षण इसमें आता है।
It is nothing but an animal propensity.
तो ये केवल एक पशु व्यवहार है।
Just like we see tigers are fighting.
जैसे हम देखते हैं कि बाघ एक दूसरे से लड़ते हैं।
And in this fighting there is defense.
और इसमें भी संरक्षण होता है।
One is trying to win and one is trying to lose.
एक जीतने की कोशिश कर रहा है, दूसरा उसको अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है।
We see how dogs are always fighting.
कुत्ते किस तरह से लड़ते रहते हैं।
This human mind, which is meant for the purpose of realizing the highest ecstasy of God consciousness, is being utilized to simply create so many various games by which they can dovetail their animal propensity of defending.
तो ये जो मनुष्य जीवन है, जिसमें हम भगवत भावना की परमोच्च भाव को प्राप्त कर सकते हैं, वो केवल ऐसे पशु व्यवहार को अच्छी तरह से करने के लिए ही उपयोग में लाया जा रहा है।
And they become try to become very very strong and very very fast.
और ऐसे खेल खेलने के लिए वो अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, बहुत चुस्त रहते हैं।
And anyone who is very strong and very fast becomes worshipable by this animalistic society.
तो इस पाशवी संस्कृति के इसके आधार पर जो ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा चुस्त है, वो पूज्य माना जाता है।
स्वेद वराहोस्त्राखराय। It is said in Bhagavatam, people who are like dogs, hogs, camels, and asses, they worship and glorify people who are better animals than them.
भागवत में कहा गया है कि जो लोग कुत्ता, सुअर, गधा, ऊंट इस तरह के हैं, वो उनसे भी जो बड़ा पशु है उसकी पूजा करते हैं।
But who can be more strong and fast than a lion or a tiger?
क्योंकि एक बाघ या शेर से ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है?
The animals are always superior to us.
पशु मनुष्य से सदैव ज्यादा चुस्त और शक्तिशाली रहते हैं।
But whoever comes closer to being strong like a tiger and fast like a tiger is considered the representative of the nation.
तो इस तरह से जो कोई ज्यादा चुस्त है, एक बाघ की तरह चपल है, उसको देश का प्रतिनिधि माना जाता है।
And people by the hundreds of millions go to see these people showing their physical strengths.
तो ये लोग जिस तरह से अपने शरीर का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग जाते हैं।
But it is said in the Shastra, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगाध्यताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। That the cows and the Brahmins are very dear to Krishna.
शास्त्र में बताया गया है कि गाय और ब्राह्मण ये भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं।
Why in this prayer it doesn't say anything about tigers?
तो इस प्रार्थना में बाघों के बारे में कुछ नहीं उल्लेख किया गया है।
Because the cow is very gentle.
क्योंकि जो गोमाता है वो बड़ी सौम्य होती है।
Very peaceful.
बहुत शांत होती है।
And she gives milk.
और वो अपना दूध देती है।
And that milk nourishes our body and nourishes our brain.
और उस दूध को प्राशन करने से हमारे शरीर और मस्तिष्क को बहुत पुष्टि मिलती है।
To help us to understand spiritual concepts.
इससे हम आध्यात्मिक सिद्धांतों को ठीक तरह से समझ सकते हैं।
That milk is utilized to make nice sweetmeats to offer to Krishna.
उस दूध से हम अनेक प्रकार की मिठाई बना सकते हैं, जो कि हम भगवान श्री कृष्ण को भोग चढ़ा सकते हैं।
And ghee to offer in sacrifice.
और यज्ञ में आहुति देने के लिए घी भी देती है गाय।
And the Brahmins are those peaceful, self-controlled, honest, and self-realized souls that give genuine spiritual direction to society.
और ब्राह्मण यानी वो व्यक्ति जिन्होंने अपना इंद्रिय दमन किया है, अपने मन को शमन किया है, पूर्ण रूप से ईमानदार और समाज को आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करने के लिए बहुत उत्सुक हैं।
To understand these principles is what living in Bharatvarsha is meant to be.
इन सिद्धांतों को समझने के लिए ही भारतवर्ष में आपको जन्म दिया जाता है।
So that same attachment that we have to all of these mundane affairs, we must cleanse our mind and learn to transfer those attachments to God.
तो इन भौतिक वस्तुओं के प्रति जो हमारी इतनी आसक्ति है, हमारे मन को पूर्ण रूप से निर्धूत या कलमश रहित करके उसको भगवान के प्रति जोड़ना है।
That is the meaning of yoga.
योग इसे ही कहते हैं।
And that is the source of real pleasure.
और ये सच्चा आनंद दे सकता है।
So it is so important. Krishna explains the process of how to attach our consciousness to him.
अपनी भावना श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार से आसक्त करना है, इसका श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर विश्लेषण करते हैं।
अदोष अदोष धात था साधु संगो था बचना क्रिया। At the beginning, there is a little bit of faith.
तो ये प्रक्रिया इस प्रकार से शुरू होती है, सर्वप्रथम कुछ श्रद्धा होनी चाहिए।
All of you ladies and gentlemen have come here tonight because of a little faith in your heart.
तो यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं और सज्जन इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आपके हृदय में थोड़ी बहुत श्रद्धा है।
You wanted to see what is this Krishna consciousness movement?
आपके मन में ये प्रश्न है कि ये कृष्ण भावना संघ क्या है?
When we have faith, Krishna directs us to sadhu sangam, to the association of devotees.
और जब आपके मन में ऐसी श्रद्धा जागृत होती है, तब भगवान श्री कृष्ण आपको साधुओं का संग जो है वो प्रदान करते हैं.
The most precious important part of our life is who we associate with.
हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा वही है हम कैसे व्यक्तियों का संग करते हैं.
If you associate with people attached to materialistic ways, you will definitely become materialistic.
तो अगर आप भोगासक्त व्यक्तियों का संग करते हैं आप जरूर ऐसे ही भोगी या कर्मी बनेंगे.
And if you associate with those who are attached to Krishna, you will definitely become attached to Krishna.
और यदि आप जो श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हैं ऐसे भक्तों का संग करते हैं आप निश्चिंत होकर समझिए कि आप भी एक दिन कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएंगे.
तद विज्ञानार्थम सुगुरुम एव अभिगच्छेत. When we approach the devotees, we gradually learn from a proper spiritual master how to purify our lives through the process of bhajana kriya. Bhajana kriya begins when we hear the truth.
और फिर एक आत्म साक्षात्कारी साधु पुरुष गुरु उनसे हम सुनते हैं किस प्रकार से भजन क्रिया में संलग्न होना चाहिए.
A real sadhu or guru will never speak what he thinks.
एक सच्चा साधु या सच्चा गुरु कभी अपने मन की बात नहीं करता.
But will always speak what is confirmed in the scriptures.
लेकिन जो कुछ शास्त्र में दिया है केवल उसकी ही बात करता है.
When we hear the glories of the Lord and we learn the process of chanting those names and glories of the Lord, we become purified.
तो जब हम भगवान का नाम भगवान का यश श्रवण करते हैं तो उस भगवान के नाम का कीर्तन या जप करना ये हमारे मन को शुद्ध करता है.
अनर्थ निवृत्ति शत ऑल ऑफ द अनवांटेड ऑल ऑफ द डिस्टर्बेंसेस ऑफ आवर माइंड बिकम क्लेंस्ड.
और इसके फलस्वरूप सारे जो अनर्थ हैं जो कि गंदगी है वो पूर्ण रूप से साफ हो जाती है.
द कॉन्शियसनेस इज ओरिजिनली प्योर. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सज्ज कबुनाय श्रवणारी सुधि चैती कोरिया उदय. प्योर लव ऑफ गॉड एंड नॉलेज ऑफ गॉड इज इनहेरेंट विद इन ऑल ऑफ अस.
हमारी चेतना मूलतः शुद्ध है. भगवान के प्रति प्रेम भगवान का पूर्ण ज्ञान ये हमारे पास पहले से ही है.
वी मस्ट नॉट डाउट दिस ट्रूथ.
इस सत्य पर कभी भी संशय नहीं करना चाहिए.
When pure water becomes filled with mud, we must filter it to bring it back to its original condition.
अगर शुद्ध जल में कुछ गंदगी मिल जाए और जल गंदा हो जाए तो जो गंदगी है उसको जल से निकलकर उस जल को फिर से शुद्ध करना चाहिए.
In the same way, by hearing and chanting the Lord's glories and names in the association of genuine devotees, our mind becomes cleansed.
इसी तरह से जब हम भगवान के यश उनकी कीर्ति का गान करते हैं भक्तों के संग में रहते हैं हमारा मन बिल्कुल उसी तरह शुद्ध हो जाता है.
And then there awakens nishtha, strong, irrepressible faith.
और इसके फलस्वरूप निष्ठा जागृत होती है.
And then ruchi, a real taste, an urge for spiritual life.
निष्ठा यानी ऐसी अटल श्रद्धा और फिर उसके बाद रुचि जागृत होती है. रुचि यानी बहुत बहुत गहरी आसक्ति.
एंड देन कम्स अशक्ति, कंप्लीट अटैचमेंट टू कृष्णा.
और फिर आसक्ति या भगवान कृष्ण के प्रति हमारा मन पूर्ण आसक्त हो जाता है.
दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ वी शुड बी स्ट्राइविंग फॉर, टू प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस एंड बिकम कंप्लीटली अटैच्ड टू कृष्णा.
तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य है जिसको प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए कि कृष्ण के प्रति मन को आसक्त करना.
कृष्ण एक्सप्लेन्स टू द डिग्री वी बिकम अटैच्ड टू हिम to that degree he reveals himself to us.
Shri Krishna Bhagwan batate hain ki jitna aap mujh par man asakt karte hain utna main apne aap ko aapke samne prakat karta hoon.
There is no other way of understanding the supreme truth.
Param satya janne ka aur anya koi upay nahi hai.
Through speculative knowledge we can understand the sat angsa, the part of the absolute truth which is impersonal and all pervading brahman.
Sirf tark vitark shushk brahm gyan karne se hum sirf bhagwan ka jo sat ansh hai jo ki nirvikar nirvishesh brahm hai keval usi ki prapti kar sakte hain.
Through the process of mystic yoga we can understand the paramatma angsa, that part of the supreme truth who is within the heart of everyone.
Aur dhyan yog ke madhyam se hum paramatma ko jaan sakte hain jo ki bhagwan ka ek pratinidhi roop hai aur sabhi ke hriday mein vidyaman hai.
But Krishna says in Gita, bhaktyatvana niyashakya aham evam vidurajana. To understand the blissful nature of the truth, absolute truth, to actually experience spiritual ecstasy which the soul is longing for, that can only be when we reunite with Bhagavan Shri Krishna through the process of bhakti or complete attachment.
Lekin jo anand hai ya jo param ullas hai jiske prati hum itne betab hain jisko prapt karne ke liye wo keval tabhi prapt hoga jab hum भगवान या भगवान श्री कृष्ण का जो ये पूर्ण पुरुषोत्तम रूप है उसी के प्रति अपने आप को आसक्त करेंगे.
नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह. एंड कृष्ण इज सो काइंड, ही हैज अपीयर्ड इन दिस वर्ल्ड इन सो मेनी मैनिफेस्टेशंस जस्ट टू हेल्प अस टू बिकम अटैच्ड टू हिम थ्रू लविंग सर्विस.
और श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने अनेक रूपों में अपने आप को यहाँ प्रकट किया है जिससे कि हम प्रेममयी सेवा द्वारा उनके ऊपर अपने मन को आसक्त कर सकते हैं.
द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड इज द मूर्ति एंड इफ इट इज अ जेन्युइन टेम्पल एस्टैब्लिश्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय जेन्युइन डिवोटीज द लॉर्ड हिमसेल्फ इज मैनिफेस्टेड इन फुल विद इन दैट मूर्ति.
तो अगर कोई भगवान का मंदिर जिसमें भगवान का अर्चा विग्रह ऐसी कोई श्री मूर्ति जिसको शुद्ध भक्तों ने संरक्षित शुद्ध भक्तों द्वारा उसकी स्थापना की गई है वहां पर भगवान अवतरण होते हैं.
जस्ट टू इंक्रीज आवर अटैचमेंट,
केवल अपनी आसक्ति को और थोड़ा बढ़ाने के लिए ही.
देयर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ लॉर्ड रामचंद्र व्हेन ही वाज लिविंग इन अयोध्या ही वुड गिव दर्शन टू द सिटीजंस ईच एंड एवरी डे.
इसके बारे में एक दृष्टांत है कि जब प्रभु रामचंद्र अयोध्या में निवास कर रहे थे वो सारी जनता को रोज दर्शन दिया करते थे.
एंड देयर वाज वन ब्राह्मण एंड दिस ब्राह्मण ही वाज सच अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ही वुड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग अंटिल फर्स्ट ऑफरिंग हिज ओबेसेंसेस एंड वर्शिपिंग श्री राम.
और अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण इतने प्रभु के परम भक्त थे कि जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे वो दाना पानी कुछ नहीं सेवन करते थे.
One day Lord Shri Ram had to leave Ayodhya for several days to do official business.
और एक दिन प्रभु रामचंद्र को कुछ निजी काम के लिए 7 दिन तक जाना पड़ा.
And when he returned, Lakshman told Shri Ram that this Brahmin did not eat or drink in 5 days.
तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण है उसने ये 5 दिन ना तो कुछ खाया है ना पिया है.
सो लॉर्ड श्री राम ही टोल्ड लक्ष्मण देयर इज अ डीटी ऑफ सीताराम दैट हैज बीन वर्शिप्ड बाय दशरथ्स एंसेस्टर्स फॉर मेनी इयर्स, गिव इट टू द ब्राह्मण.
तो प्रभु राम
लॉर्ड राम टोल्ड द ब्राह्मण दैट दिस डीटी इज नॉन डिफरेंट देन मी. If I am not in Ayodhya, you offer obeisances, worship this deity, and eat nice prasad.
Prabhu Ramchandra ne us apne bhai Lakshman se kaha ki us brahman ko ek aisi murti dijiye jo ki hamare paas anek yugon se hai aur Dashrath aur unke jo purkhe hain un rajaon ne unki puja ki hai और उस ब्राह्मण से कहा कि इस मूर्ति में और मुझ में कोई भेद नहीं है.
कृष्णा, टू अंडरस्टैंड हिज तत्व वी मस्ट नो दैट ही इज एब्सोल्यूट एंड बाय हिज ओन स्वीट विल ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन फुल विद इन द मूर्ति एंड एक्सेप्ट्स आवर लव एंड डिवोशन फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर हार्ट.
हमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि श्री कृष्ण पूर्ण है. पूर्ण होने के नाते वो मूर्ति में प्रकट हो सकते हैं और हमारे प्रेम को वर्धिष्णु बनाने के लिए उस मूर्ति द्वारा सेवा को स्वीकार कर सकते हैं.
एंड सिमिलरली द वर्ड्स ऑफ भागवत गीता एंड द ऑथराइज्ड शास्त्रस कृष्ण इज स्पीकिंग थ्रू अस. Authorized shastras, Krishna is speaking through us, through these scriptures to us.
और ये जो भगवत गीता आदि जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र के जो वचन हैं, ये बिल्कुल वही भगवान श्री कृष्ण की वाणी है जो हमसे वो बात कर रहे हैं.
When we hear of Krishna's lila, if we have a pure heart, we can understand and
चित और आनंद होगा और वैकुंठ में आपको निवास प्राप्त होगा.
People are very much fond of becoming intoxicated by all of these mundane pleasures of the world.
तो लोगों को ये जो सांसारिक या भौतिक आनंद हैं, इनको प्राप्त करके एक प्रकार की नशा करने में बड़ा आनंद आता है.
But Krishna has appeared as Lord Chaitanya, the Yuga Avatar, to teach us the real process of intoxication.
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार धारण करके जो सच्ची प्रकार की पवित्र जो नशा है, पवित्र उन्मत्तता है, वो सिखाई है.
One day when Lord Chaitanya was walking through the streets of Navadvip with his dear devotee Srivas Thakur, they came by the house of some people who were intoxicated drinking wine.
एक बार जब भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के संग में रास्ते पर जा रहे थे तो वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर कुछ लोगों ने नशा कर रही थी.
When you become intoxicated with this wine or drugs, it gives some temporary pleasure, but ultimately it ruins your life.
तो नशा करने पर थोड़ा सा आनंद मिलता जरूर है लेकिन अंत में हमारा सर्वनाश हो जाता है.
So when Lord Chaitanya heard these drunken people singing all drunken songs, he remembered his incarnation as Balaram.
तो चैतन्य महाप्रभु ने जब इन शराबियों को सुना कि शराबी किस प्रकार के गाने गा रहे थे, तभी उनको अपना जो बलराम का रूप है वो स्मरण हुआ.
Balaram would sometimes drink a celestial beverage called Varuni, which would increase his spiritual ecstasies.
Balaram ji kabhi kabhi ek divya peya jiska naam varuni hai usko prashan karte hain jisse unke jo bhav hain wo adhik unche ho jate hain.
So Lord Chaitanya, he said, I will go in this house of people drinking wine.
To Mahaprabhu ne kaha ki main bhi is sharab ghar mein jana chahta hu.
I will go in.
Main andar jaunga.
And Srivas fell at his feet and very gently begged him, please, my lord, do not go in.
लेकिन श्रीवास जो हैं, उन्होंने प्रभु के चरण पकड़े और विनती की कि प्रभु कृपया अंदर मत जाइए.
The lord said, I am free, I am independent, I will go in.
उन्होंने कहा, मैं तो मुक्त हूँ, मैं स्वराट हूँ, मैं तो अंदर जरूर जाऊँगा.
If I want to go in, who will stop me?
अगर मैं अंदर जाना चाहता हूँ, कौन मुझे रोक सकता है?
And Srivas began to cry. He said, my lord, you are the supreme personality of Godhead. You can do whatever you like.
और श्रीवास वो तो रोने लगे, आप तो स्वयं भगवान हैं, जरूर आप जो चाहे कर सकते हैं.
But you have come to this world to teach people the true principles of religion.
लेकिन आप अब इस पृथ्वी पर लोगों को सच्चा धर्म क्या है सिखाने के लिए आए हैं.
For whatever reason you go into these wine drinkers' houses, people will get the wrong idea.
तो आप किसी भी कारण इस शराब घर में जाएंगे लोगों का उसके प्रति गलत उनकी गलत धारणा होगी.
They will criticize and blaspheme you.
वो आपकी निंदा करेंगे.
And in this way, they will ruin their lives.
और इस तरह से वो अपना ही सर्वनाश करेंगे.
So please, I beg you, set the proper standard for humanity and do not go in. For if you go in, I will feel so much depressed to hear criticism of you that I will promise to drown myself in the river Ganges.
तो कृपया आप मत जाइए, क्योंकि अगर आप अंदर जाएंगे, आपकी निर्भस्ता होगी, आपकी निंदा होगी, और मैं वचन देता हूँ, वो मैं सुन नहीं सकता, और अगर आपकी निंदा हो रही है, मैं अपने आप को डुबा दूँगा.
And Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who always fulfills the desires of his devotees, he replied, "You have promised to drown yourself in the Ganges if I go in, so I will not go in."
तो भक्तवत्सल भगवान जो हर एक इच्छा अपने भक्ति पूर्ण करते हैं, उन्होंने श्रीवास से कहा कि आपने गंगा जी में डूबने का जो वचन लिया है, तो अगर ऐसा आप करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा.
So he started walking by the house with Srivas.
और फिर वो उस घर के आगे से चल दिए.
And he was chanting Krishna's holy names.
और वो कृष्ण का नाम का कीर्तन कर रहे थे.
And he was dancing in great love.
और बहुत प्रेम से नृत्य कर रहे थे.
And when those drunken people, intoxicated with wine, saw him, they started saying, "Ah, there is Nimai Pandit."
और जब उन शराबियों ने देखा कि ये नृत्य गीत करते जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये देखो, ये निमाय पंडित जा रहे हैं.
He's a good singer and he's a good dancer.
बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छा नृत्य करते हैं.
And just by seeing him and hearing him, they all began to chant the holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सिर्फ महाप्रभु को देखकर वो शराबी भी इस तरह से हरे कृष्ण मंत्र का जय घोष करने लगे.
And they became so blissful chanting the holy names that they forgot all about the intoxication of their wine, and they became intoxicated by the higher pleasure of Harinam Sankirtan.
और जब वो हरिनाम लेने लगे, तब उन्होंने जो भी शराब पी चुकी थी उस सबको वो भूल गए, और सच्चा जो आनंद है उसका वो अनुभव करने लगे.
And as the Lord was walking down the roads, all of these previously drunken people, drunken on the intoxication of Harinam, were following behind him, dancing in ecstasy with their arms raised, chanting the holy names of Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जब इन सारे शराबियों ने देखा कि किस प्रकार से महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, वो भी उनके साथ नृत्य करने लगे और हरि नाम का कीर्तन करने लगे.
And the Lord Chaitanya, upon seeing them, smiled upon them with his merciful glance.
और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुंदर दृश्य देखा, तो उन्होंने बहुत ही प्रेम से स्मित करके उनके ऊपर अपना कृपा कटाक्ष डाला.
Being so pleased to see them sincerely chanting the names of Krishna, he bestowed upon them the ultimate perfection of life, prema bhakti.
और इस तरह से अत्यंत प्रामाणिक रूप से उनको कीर्तन करते हुए देखकर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके उनके ऊपर जीवन की परमावधि प्रेम भक्ति जो है वो प्रदान की.
And Srivas Thakur began to cry in joy to see the Lord's compassion upon the most fallen.
और इस तरह से अत्यंत पतित और भ्रष्ट जीवों पर प्रभु की कृपा देखकर श्रीवास ठाकुर की आंखें आनंद अश्रु से भर आई.
And these fortunate souls gave up all their sinful activities and raised their arms and began dancing in ecstasy, chanting Krishna's name.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. और इन भाग्यवान जीवों ने इस तरह से कीर्तन करना शुरू कर दिया.
In this way, we are all intoxicated by so many of the temporary pleasures which are sources of pain in this world.
इस तरह से अनेक क्षणभंगुर या तात्कालिक सुख जो है इस दुनिया में हम इसकी खोज करते हैं और जिसका अंत में जो परिणाम है वो दुख ही होता है उनकी हमको हमेशा नशा चढ़ी होती है.
But if we learn to attach ourselves to associating with God's devotees and chanting Krishna's names and hearing his glories, we can achieve real pleasure, transcendental to birth and death.
लेकिन अगर आप अपना मन साधु संघ में हरिनाम कीर्तन में आसक्त करेंगे तो आपको सच्चा आनंद मिलेगा और आप जन्म मृत्यु के परे जा सकते हैं.
His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the great ambassador of the true heritage of India, has brought this message of true Sanatan Dharma through Harinam Sankirtan to the whole world.
Aur Krishna Krupa Murti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, jo ki Bharat Bhumi ki Sanskriti ke सच्चे राजदूत हैं, उन्होंने इस हरिनाम संकीर्तन को सारे विश्व में प्रसारित किया है.
Even the most fallen souls, addicted to illicit sex, intoxication, gambling and meat eating.
यहाँ तक कि ऐसे भ्रष्ट लोग जो मांसाहार करना, शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, ऐसे पापमय कर्मों में आसक्त थे.
Addicted to accumulating more and more and more money and wealth for sense gratification.
और इंद्रिय भोग के लिए और ज़्यादा संपत्ति के प्रति बहुत लोभी हो चुके थे.
Addicted to so many forms of entertainment like disco and intoxication and sporting events.
अनेक प्रकार के जो कर्म अनेक साधन हैं जिससे लोग अपना मनोरंजन करते हैं उसके प्रति वो आसक्त हुए थे, जैसे डिस्को है, अनेक प्रकार के खेल हैं.
And transform their lives where they detach themselves from all these things by experiencing the higher taste of love of God through attaching themselves to hearing and chanting the glories of Krishna.
लेकिन जब उन्होंने भगवान कृष्ण के नाम के प्रति आसक्ति जो है उसके बारे में सुना और वो आसक्त हुए तब उन्होंने एक ऊंचे प्रति का रस अनुभव किया और इन सारे अनर्थों को छोड़ दिया.
When Srila Prabhupada saw that the people of India were following the ways of the West with the intoxications of material enjoyment, he became very sad.
जब श्रीला प्रभुपाद ने देखा कि समस्त भारतीय ऐसे पाश्चात्य लोगों का अंधानुकरण कर रहे हैं कि वो भी उनके जैसे ही अलग अलग प्रकार के अनर्थों में अपने आप को व्यस्त कर रहे हैं उनको बहुत दुख हुआ.
And came back to this great land of Bharatvarsha to remind all of you of the real ecstatic bliss of living according to your true spiritual heritage.
और अपनी सच्ची संस्कृति की पहचान करने के लिए जिससे कि हम सर्वश्रेष्ठ आनंद अनुभव कर सकते हैं वो प्रदान करने के लिए वो फिर भारतवर्ष लौट आए.
And give you the ultimate treasure of love of God through the chanting of the holy names.
जिससे कि हरिनाम कीर्तन के माध्यम से वो हमें सर्वश्रेष्ठ संपत्ति जो है वो प्रदान कर सकते हैं.
Srila Prabhupada established centers all over the world for this purpose.
उन्होंने इसी हेतु पूर्ति के लिए विश्व में अलग अलग जगह पर केंद्रों की स्थापना की.
And through his followers, he has established a beautiful center even here at Mira Road.
और प्रभुपाद जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ मीरा रोड में भी एक बहुत सुंदर केंद्र की स्थापना हुई है.
Just a few minutes from here.
यहाँ से कुछ मिनटों की दूरी पर वो केंद्र है.
On the holy day of Ram Navami, Sri Sri Radha Giridhari will appear in the Hare Krishna temple at Mira Road.
और यहाँ पर राम नवमी के उत्सव पर श्री श्री राधा गिरिधारी जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी.
here in Bombay, Radha Giridhari Temple at Mira Road, Radha Ras Bihari Temple in Juhu, Radha Gopinath Mandir in Chopati, are places where we could learn the art of attaching our consciousness to the source of all bliss, Krishna.
तो रसराज कृष्ण के प्रति अपनी अपने मन को आसक्त करने के लिए यहाँ बम्बई में मीरा रोड में श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर, जुहू में श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर और गिरगांव चौपाटी में श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर स्थापन हुए हैं।
Please take advantage of this great gift of Srila Prabhupada.
कृपा करके
by reading his books, by coming to his temples, by associating with his devotees, and by following the simple process of chanting the Lord's holy names.
कृपा करके श्रील प्रभुपाद ने आपके लिए जो उपहार लाए हैं, ये उपहार है उनके मंदिर, उनके ग्रंथ, उनके भक्त, उन सब का आप जरूर लाभ उठाइए।
And make your life successful.
और इस तरह से अपने मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाइए।
And reveal to the world the true glory of India.
और इस तरह से सारी दुनिया के सामने भारत की सही पहचान और सही जो उसकी गरिमा है उसको प्रकट कीजिए।
श्रील प्रभुपाद की
जय।